ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग की। तो हर बात को अगर हम प्रोग्राम करके जीवन में लाते हैं तो हम सुख अपने आप पाएंगे, नहीं तो फिर दुख ही मिलेगा, क्योंकि हर चीज तमोप्रधान हो चुकी है। हर चीज किसी में भी सतो या सतो प्रधान अवस्था की शक्ति नहीं बची हुई है। तुम जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, जो भी हम कार्य करते जा रहे हैं, प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम के बिना कोई चीज कुछ नहीं देगी। आपका एक पेन हो, पेंसिल हो, किताब हो, कुछ भी हो, सिंपल सी बात है बैच। बैच भी अगर आप प्रोग्राम करके लगाते हैं, मतलब अपने हाथ में लिया और बोल दिया मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आत्मा समझ के 21 बार बोल दिया, सात बार बोल दिया, और फिर बैच के ऊपर संकल्प किया कि ये जब तक बैच मेरे पर लगा हुआ है तब तक मुझे ब्राह्मण पने की स्मृति रहेगी। अब देखिए, अब कहा भी ब्राह्मण हो यह भूल नहीं पाएंगे, अपने आप आपको याद रहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि उस बैच में एनर्जी है हर बात के लिए। जिस बात के लिए भी लगाते जाएंगे, प्रोग्राम करते जाएंगे, होता जाएगा। थोड़ी देर पहले जो हमने बात की सुबह में, जब हम हमारे में नहीं होते तो हमसे कोई और आके पार्ट प्ले करके चला जाता है। एक माता ने बहुत अच्छा कहा था, हीलर है वो, अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा था, ऐसी जब बातें होती है, दूसरी आत्माएं जब प्रवेश होती है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका, उन्होंने कहा कि बैच को हाथ में ले लो, 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो और फिर उस बैच को लगा दो। 7 दिन तक दूसरी कोई आत्मा आपके आसपास नहीं आ सकती। बस बैच को नहीं निकालना है, बैच लगाना है। तो कहना यही है, प्रोग्रामिंग है। जिस चीज को हम प्रोग्राम करते जाएंगे, आप अनुभव करते जाएंगे, सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तो आज से हम प्रोग्रामिंग करेंगे ही करेंगे। रात को सोना है, उससे पहले चलो दोपहर को सोना है, कार्य करना है। आप कभी अनुभव करके देखिए, अगर कपड़े धोने हैं, बर्तन करने हैं या कोई और कार्य करना है, आप हाथ से करने वाले हो तो आपके हाथों को थोड़ा समय सकाश दीजिए मास्टर ज्ञान सूर्य और सर्वशक्तिवान इस स्वमान में, और उनको बस ऑर्डर दीजिए कि इतने बर्तन करने हैं, इतने कपड़े धोने हैं, इतने समय में हमें कंप्लीट करना है, और फिर आप काम शुरू कीजिए, देखिए क्या होता है। अब बस देखते जाएंगे और काम होता जाएगा, आपके हाथ चलते रहेंगे और आप बस देखते रहेंगे। जब आप स्वयं काम करते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन आप किसी और से काम करवाते हो तो आप थकते नहीं हो। तो आपने क्या किया, हाथों से काम करवाया। एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते कि आपके हाथ आपकी सुन रहे हैं या नहीं है, करके देख लीजिए। तो ये प्रोग्रामिंग जैसे करते जाएंगे, भोजन बनाना है, हाथों को, आंखों को प्रोग्रामिंग कीजिए, कि आंखों को प्रोग्रामिंग कीजिए कि भोजन में एक पवित्र ऊर्जा जब तक भोजन बन रहा है तब तक आपसे बहती रहेगी। आपका ध्यान ना भी हो फिर भी आंखों से अपने आप पवित्र ऊर्जा बहेगी। मन बुद्धि का प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे, लेकिन वो एंड में सीखेंगे, क्योंकि पहले उनको जानना पड़ेगा। पहले स्थूल रूप से सीखते हैं। मुख को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जब तक भोजन बन रहा है तब तक मुख से अगर शब्द निकले तो सर्वोच्च शब्द होंगे, परम पवित्र होंगे, ताकत देने वाले होंगे। प्रोग्रामिंग की, हाथों को प्रोग्रामिंग कीजिए वंस अगेन कि भोजन बनाना है, इतनी सभी आत्माओं की, परिवार की सेवा है, ब्राह्मण परिवार हो या लौकिक परिवार की, तो आपको बनाना है। अपने हाथों को कहा और कहा, कहना है कि आपको एकदम परफेक्ट भोजन बनाना है, जिस भोजन को खाने के बाद सबको तृप्ति मिले, अपने हाथों को कह दिया। न चाहते हुए भी हर चीज आपके हाथों से उतनी ही गिरेगी जितनी आवश्यक है, एक्स्ट्रा नहीं गिर सकती। फिर वो तेल हो या तीखा हो, हल्दी हो, जो भी है उतना ही गिरेगा जितना उसके लिए आवश्यक है। अब करके देखिए प्रोग्रामिंग, हर चीज की प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामिंग नहीं करते तो जो आदत है उतना ही डालेंगे, हाथ अपने आप डालते जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे तो ज्यादा तीखा हो गया, इसमें ज्यादा ऑयल आ गया, नमकीन हो गया। हाथों की आदत, तो हमें सारे शरीर की आदत बदलनी है। सुबह में उठने के बाद आपके पांचों कर्मेंद्रियों को प्रोग्राम कीजिए, कानों को कीजिए कि आज दिन भर में आपको सबसे ऊंचा मेरी स्थिति बढ़ाने वाला ही ज्ञान सुनना है, जिससे मेरी स्थिति ऊंची उठेगी, ऐसी बातें आपको सुननी है। कानों में एनर्जी ओके होगी। आंखों को प्रोग्रामिंग कीजिए सकाश देके, आज दिन भर में आपको ऐसी चीजें देखनी है जो बाबा की श्रीमत अनुसार है। करके देखिए। मुख को प्रोग्रामिंग कीजिए कि आज दिन भर में आपको सिर्फ बाबा के ही महावाक्य या फिर सभी आत्माओं को जो भी मिलेगा उसको सुख देने वाले महावाक्य मुख से निकालने हैं। हो गया काम दिन भर में, इजी। हाथों की कीजिए तो आपका शरीर जिस दिन प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर आप एक नई रचना रच रहे हैं। प्रोग्रामिंग करना मना रचना। किसी भी बच्चे को पहले दिन एबीसीडी नहीं आती, वो थोड़ा सा निकालता है आगे पीछे होके, फिर दूसरे दिन और अच्छा, तीसरे दिन और अच्छा। आप बस सुबह में उठकर प्रोग्रामिंग करते जाइए, आपके संस्कार अपने आप परिवर्तन होंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग करना बहुत आवश्यक है, नहीं करेंगे तो आंखें वही करेंगी जो अब तक करती आई है, मुख वही बोलेगा जो अब तक बोलता आया है, कान वही सुनेंगे जो अब तक सुनते आए हैं। तो प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो जब हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है। ये हो गई कार्य की। किसी भी कार्य के लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, पढ़ा रहे या पढ़ रहे, प्रोग्रामिंग करना है। फिर आप संकल्प, प्रोग्रामिंग मना और कुछ नहीं, बस एक संकल्प उठाना है कि आपको क्या करना है। बिना ऑर्डर के कुछ नहीं चलता इस साकार वतन में, बिना ऑर्डर के कुछ नहीं चलता। कोई कुछ भी करे, बिना ऑर्डर के हमारी सांस भी नहीं चल रही, शरीर की एक सेल भी नहीं चल रही बिना ऑर्डर के। तो ऑर्डर देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और ऑर्डर देगा और फिर हम दुख में चले जाएंगे। तो जब आप सो रहे हो तो अपने शरीर को ऑर्डर दीजिए, शरीर को, कि ऐसे ऐसे कार्य करके मैं आत्मा भी और आप भी थक गए हो, तो अभी हम 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए रेस्ट करने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से रेस्ट कीजिए, रिकवर हो जाइए अपने शरीर को, पूरी प्रोग्रामिंग, नींद को। और अब अनुभव करेंगे अगर आपकी प्रोग्रामिंग एक्यूरेट हुई, होने के चांसेस 99.99 है, ना होने का 0.1 है फिर सिर्फ। तो आपने अगर बोल दिया अभी 12:30 बजे, सपोज बोला कि अभी रेस्ट कर रहे हैं, बरोबर 2 बजे हमें उठना है और दूसरे कार्य को काम लगना है, बरोबर 2 बजे आपकी आंख खुलेगी। आपने क्या किया, अलार्म लगा दिया, शरीर का अलार्म लगा दिया कि 2 बजे उठकर आपको ये काम करना है। 2 बजे उठने के बाद फिर से शरीर को रेडी करना है, अभी ये कार्य हमें करना है। अगर शरीर को रेडी नहीं करते तो फिर शरीर और मन आगे पीछे हो जाता है। तो शरीर को तैयार करना है कार्य के लिए प्रोग्रामिंग करके, कैसे भी हो। उसके बाद फिर शाम की चाय है, नाश्ता है, जो भी है, अब स्नैक्स खा रहे हैं, प्रोग्रामिंग वन सेकेंड। और शाम को फिर से नुमा शाम करने से पहले प्रोग्रामिंग कीजिए कि इस नुमा शाम में आपको किस प्रकार की अनुभूति करनी है। बाबा ने राजयोग इतना सहज दिया है कि करना कुछ नहीं है, ऑर्डर देना है, बस ऑर्डर देना है, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इससे सहज और क्या कर पाएगा बाबा? बाबा तो नहीं ऑर्डर दे सकता हमारे कर्मों के लिए। उसने कहा कि बस ऑर्डर दे दो, प्रकृति काम करेगी, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आपके पास वह ताकत है। तो हमारा काम है ऑर्डर देना, जो चीज हमें चाहिए उसके लिए ऑर्डर क्रिएट करना और दे देना, काम अपने आप हो जाएगा। यह प्रोग्रामिंग, अभी एक टॉपिक निकला, थोड़ी देर पहले एक माता का सवाल था, यह प्रोग्रामिंग न सिर्फ आप अपने आपके लिए कर सकते, बस एक किसी और के लिए भी आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि परिवार का यह सदस्य है, ज्ञान में नहीं चल रहा है या चल रहा है लेकिन ऊपर नीचे है, इसके कारण परिवार को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, उनको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी को भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, आपके हाथ में है। सूक्ष्म में कैसे प्रोग्राम करते हैं? जब आप किसी के लिए निगेटिव बोलते हैं, ये ऐसे ही है, आपने प्रोग्राम कर दिया, या फिर आपने अच्छा बोल दिया, ये ऐसे है या हो रहे हैं, बन रहे हैं, आपने प्रोग्राम कर दिया। जब आप कॉन्शियसली प्रोग्राम करते हैं, जागृत है, जागृत अवस्था में आपको पता है कि आप अभी इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उन्हें सकाश दीजिए ज्ञान का, गहरे नीले रंग का, फिर शक्ति का सकाश दीजिए, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्ति भी चाहिए, अभी उनके पास ताकत नहीं है। और फिर संकल्प कीजिए कि अभी जो ऊर्जा आपके अंदर बाबा ने भरी है मुझे निमित्त बनके, उस ऊर्जा के कारण, उस ऊर्जा से आपकी बुद्धि, आपका मन बहुत शांत और शुद्ध हो जाएंगे, और वो जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कार्य नहीं कर रहे, आपको लग रहा है ठीक से घर में बर्ताव नहीं कर रहे हैं, जॉब पर नहीं जा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जो आपको चाहिए प्रोग्राम कीजिए, इस ऊर्जा से आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। उस ऊर्जा को ऑर्डर दे, उस आत्मा को नहीं, आप अच्छे से बिजनेस करेंगे, परिवार में सबसे अच्छे से रहेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, सभी से प्यार से रहेंगे, सभी से अच्छी बातें करेंगे। अपने क्या किया प्रोग्रामिंग की, उस आत्मा को नहीं पता चलता क्योंकि वह कमजोर है। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है यह भी पता है, आप शक्तिशाली हो। उनके पास कमजोर मना, कोई आत्मा कमजोर नहीं, बस ज्ञान की और शक्ति की ऊर्जा कम होने के कारण जैसे कि कमजोर है। तो आपने एनर्जी दी और एनर्जी को प्रोग्राम किया, वह एनर्जी उनको चला रही, उनको पता नहीं चलता हम ऐसे कैसे हो गए, अच्छे से पढ़ाई करने कैसे लग गए, बिजनेस कैसे संभालने लगे, सबसे अच्छा व्यवहार कैसे करने लगे। ये होगी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, आपने कर दिया, तो अपने आप उनका मन चलता जाएगा जहां आप चलाना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई आत्मा है आपके परिवार की जो सारे दिन भर में चिड़चिड़ेपन की अवस्था में रहती है, क्रोधित होकर रहती है, तो सुबह में उठते ही जब आप खुद के लिए प्रोग्रामिंग करके हो जाएगी, उसके बाद फिर आप उनके लिए कीजिए, उनको सकाश दीजिए, उन आत्मा को देखकर पूरे आत्मा के शरीर में ऊर्जा जा रही है ज्ञान की, गहरे नीले रंग की, फिर शक्तियों की ऊर्जा भेजिए लाल रंग का सकाश, और उसके बाद फिर प्रोग्राम कीजिए, यह ऊर्जा आपको सारे दिन भर में शुद्ध और पवित्र रखेगी, ताकत देगी, आपको सफलता देगी। आपके बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, सफलता नहीं मिल पा रही तो प्रोग्राम कीजिए, आपको सफलता दिलाएगी। तो वह आत्माएं जहां भी जाएंगी उनके साथ एक एनर्जी है, जैसे हमारे साथ बाबा है, उनको बाबा का ज्ञान है नहीं, पूरा निश्चय है नहीं, पता नहीं, तो हम जब भी कुछ बात हो बाबा को याद करते हैं, बाबा हाजिर हो जाता है, मदद मिल जाती, तो उनके लिए आपने मदद दिलवा दी बाबा से, तो फिर प्रोग्राम किया, और अपने प्रोग्राम किया और कि जब तक मुझ आत्मा का संकल्प नहीं है तब तक इस ऑरा को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इस एनर्जी के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। उससे क्या हो गया, उस एनर्जी को आपने लॉक कर दिया, वह आपकी एनर्जी है और आपने लॉक कर दिया। लॉक करने के कारण वह वैसे ही चलेंगे जैसे आपने डिसाइड किया है। लेकिन इसमें एक थोड़ी समझदारी वाली बात हम कहेंगे, आपके स्वार्थ के लिए किसी को बदलने का प्रयास नहीं कीजिए। बोझा बहुत बैठेगा, बहुत बोझा बैठेगा। मतलब आपके कार्मिक अकाउंट है अलग बात है, लेकिन वो आत्मा आपको सुख मिले इसलिए सुधरे, ये तो स्वार्थ हो गया। मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, इसलिए वह सुधरे, ये स्वार्थ हो गया। तो हमने क्या किया, गलत प्रोग्रामिंग की, किसी के माइंड को हैक किया और अपने तरीके से चलाया, ये तो पाप हो गया। फिर अच्छी बात नहीं है। उस समय में क्या करना है, सबके लिए है तो प्रोग्राम कीजिए, उस समय में बस उनको सकाश देना है, सकाश देना है। वो कैसे बिहेव करे यह आपको डिसाइड नहीं करना है, उनके पास ताकत नहीं है बिहेव करने की, एनर्जी नहीं है, इसलिए बिहेव गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। लेकिन उनको ताकत ही मिल गई, अपने आप अच्छा बर्ताव करेंगे और आपका स्वार्थ भी नहीं रहेगा, निस्वार्थ भावना से हो जाएगी। तो इस प्रकार हम रात तक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले पोतामेल देने के बाद अमृत वेला उठने का प्रोग्रामिंग कीजिए। पूरे शरीर को कहिए प्रोग्रामिंग करके कि हमें अमृत वेला उठकर एक घंटा बाबा को याद करना है। मैं नहीं आना चाहिए, हाँ इसमें मुझे, इसमें एक बात निकली मुझे वाली, जब तक मैं बचा है तब तक दुख है, जब मैं खत्म हो जाएगा तो दुख नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं को समाप्त कीजिए, मैं के ऊपर ध्यान मत दीजिए। यहां देखिए हो जाएगा बंद, चिंता नहीं कीजिए। तो मैं के ऊपर अटेंशन दीजिए। कैसे, बहुत बार हम करते हैं, किस लिए, मुझे अमृत वेला कल करनी है, मेरी अमृत वेला मिस हो गई, मेरी आज मुरली लेट हो गई, करना है सब कुछ, लेकिन मेरा कहां से आ गया बीच में, मेरी अमृत वेला कहां से आ गई, मेरी मुरली कहां से आ गई। जब ये मेरी बात आती है ना तो असफल हो जाते हैं। मेरी, मुझे आज एक घंटा योग करना है, मुझे, मुझे हमारा शुद्ध नहीं है, जो मुझे है ना वो हमारा शुद्ध नहीं है, उसके कारण वो हो नहीं पाते वो बात। जिस बात के लिए आप मैं लगा रहे हो, चेक कीजिए मैं कौन सा है। ये सबसे बड़ी बात है, फिर से रिपीट होके आई है स्टार्टिंग से, कि मैं को क्लियर करना है। अगर आप संकल्प करते हैं मुझ आत्मा को बाबा की श्रीमत अनुसार कल की अमृत वेला करनी है तो क्लियर होगा। मुझ आत्मा को बाबा की श्रीमत अनुसार, मना मुझे नहीं करनी है, मैं करूंगी तो उसका इस्तेमाल कहां होगा मुझे पता नहीं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए यूज करने वाली हूं, विश्व कल्याण के लिए नहीं हो पाएगी। बाबा की श्रीमत अनुसार, सब बाबा के ऊपर, जो चीज बाबा को समर्पित होती है वो सबसे ऊंचाई पर उठ जाती है। भोजन का अभी इस चीज से याद आया, मैं का और इससे भोजन का, जब आप भोजन लगाते हैं तो हमेशा एक संकल्प कीजिए, कितनी भी जल्दी हो, ये बाबा का दिया हुआ भोजन है, बाबा को अर्पण है, बाबा के इस बच्चे के लिए बाबा खिला रहा है और बाबा भी खा रहा है, और इस रथ के लिए बाबा ने दिया है, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, जो चीज मेरे लिए नहीं है वह विश्व को अपने आप सुख शांति प्रदान करती है, और न सिर्फ विश्व को बल्कि हमें भी देती है जो मेरी नहीं। ये मैं बचा है, यही सारे झगड़े हैं, मैं के कारण सारे झगड़े चल रहे हैं। जब मैं शुद्ध हो जाएगा, अगर आप और एक विधि सहज बताते हैं इस मैं के बीच में, आप अनुभव करके देखिए, ये शायद से आपको भक्ति मार्ग के जैसे लगेगा, लेकिन कम से कम खुद को ठीक करने के लिए तो ही सही, इस्तेमाल करके देखिए। ये जो मैं है, मैं नहीं हूं, ये एक बाबा का बच्चा है और बाबा का स्वरूप है। मैं नहीं, बाबा का बच्चा और बाबा का एक स्वरूप है। जब बाबा का स्वरूप ही बच्चा है, मैं नहीं, तो सफलता अपने आप है, सुख शांति अपने आप है। मैं को निकाल दीजिए। किसी भी बात में संकल्प करते समय, प्रोग्रामिंग करते समय चेक कीजिए, मैं कितना है, बाप कितना है, चेक कीजिए। बाबा और विश्व सेवा। अगर मैं गुण और शक्तियां धारण करनी चाहती हूं, अगर हमारा इंटेंशन है कि मैं 16 कला संपन्न और संपूर्ण बनूं, ब्रह्मा बाप समान बनूं, हम पूछते क्यों, अब क्यों बनना चाहते हैं? अगर इस क्यों के पीछे राज है कि विश्व कल्याण हो जाए, इसलिए मुझे 16 कला संपूर्ण और संपन्न बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो अब बन ही गए समझ लीजिए। लेकिन आप कहीं ऊपर उठें, आपको लोग पहचाने, मेरी शक्तियां और गुण लोगों को दिखे, मुझ में अच्छा ही आ जाए, मैं हूं विश्व कल्याण और बाबा नहीं है, मैं हूं, जितना भी मैं है तब तक असफल है, और जब बाबा है और विश्व कल्याण है, ब्रह्मा बाप समान बन ही गए समझ लीजिए, समय नहीं लगेगा। तो इस मैं को निकालना है प्रोग्रामिंग के समय, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार हम हर चीज को प्रोग्राम करते जाएंगे और देखेंगे जीवन अपने आप सुखी होता जाए। अब जहां बैठ रहे हैं वहां भी संकल्प करके ही बैठे हैं। एक बार आपकी स्थिति ठीक हो गई ना, एक बार स्थिति आ गई, तो आपको संकल्प भी करने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं संकल्प की भी जरूरत नहीं। आपको किसी ने कुछ दिया खाने पीने के लिए, आपने बस हाथ लगाया, फिर भी एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि आपकी स्थिति ही चेंज है, आपकी प्रोग्रामिंग ही चेंज है। यहां तक आप पहुंचेंगे कि लिटरली उसे खास दृष्टि देने की भी आवश्यकता नहीं, आपके स्पर्श से ही उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर कोई गलत ले ही नहीं रहे, आपके संपूर्ण शरीर में, आपके मन बुद्धि संस्कारों में सिर्फ प्योर एनर्जी भरी हुई। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब ब्राह्मण ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं तो किसी को हाथ भी लगाते हैं तो सोना बन जाते हैं, मिट्टी भी सोना बन जाती है। किसी आत्मा को ज्ञान भी देंगे तो ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, वरना पारस बन जाते हो। ऐसी अवस्था पर हमें पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए तब तक इन सारी विधियों को करना पड़ेगा। तो कम से कम अगर आप 3 महीने रेगुलर प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ ना करते हुए, 3 महीना, तो अब देखिए जीवन बदल जाएगी। बाबा ने भी कहा है अव्यक्त मुरलियों में, सदाकाल का अभ्यास, 3 मास का अभ्यास अगर किसी भी बात का होता है तो वह सदाकाल का हो जाता है, क्योंकि वह संस्कार बन जाते हैं। अब निकालना भी चाहो फिर भी नहीं निकलेंगे, हमारे सारे संस्कार इतने जन्मों से आए हुए, धीरे 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 करते करते ऑटो प्रोसेस में प्रोग्रामिंग होकर हमारे अंदर आया। अभी 3 महीना कॉन्स्टेंटली सारे शरीर को, मन बुद्धि संस्कारों को प्रोग्राम करना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन होगा। न सिर्फ हम कहेंगे घर तक रुके थे, परिवार के सदस्य तक, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति का माइंड आप चेंज कर सकते हो। आपकी थॉट्स हैं, आपके पास वो पावर है। किसी भी कोने में कोई भी आत्मा बैठी है, किसी का भी माइंड आप चेंज कर सकते हो। आज दुनिया में बड़े बड़े हीलर्स हैं, कहां बैठे भारत में हील करते अमेरिका के लोगों को, किसी को भी हील कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक एनर्जी, संकल्पों से एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उन एनर्जीज में प्रोग्रामिंग है कि वो एनर्जी क्या करेगी। तो किसी के साथ भी आप रहकर उन्हें आप शक्ति प्रदान कर सकते हैं, सफलता दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में, किसी को भी। लेकिन जिस समय आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, आप उसको गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, संभाल के गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कोई कैसा है, कोई आत्मा वैसी नहीं है, वो उसका पार्ट है। हम पार्ट को देखकर उस आत्मा को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कितनी गलत बात है, सोचिए। कितनी गलत बात हो रही है। किसी के पार्ट को देखकर हम कहते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, मतलब उस आत्मा को कैसी एनर्जी दे रहे, पार्ट उनका जो भी है ड्रामानुसार। अभी इस समय हमें गाली देने का पार्ट है, वो उनका पार्ट है। किसी का थप्पड़ मारने का पार्ट है, वह उनका पार्ट है। लेकिन वह उनका पार्ट बजा रहे, हम अपना पार्ट कैसे बजा रहे, ये हमारे हाथ में है। उनका पार्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारा पार्ट हमारे हाथ में। चाहते हुए भी हम रोक नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते उनके पार्ट के लिए। बस हमें क्या करना है ये हम सोच सकते हैं। आज ब्राह्मणों का एक संकल्प सारी दुनिया को नीचे ला रहा है, गिरा रहा है या ऊपर उठा रहा है। बाबा ने भी कहा है कि जब सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प होगा तभी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर यह सृष्टि चलती है। हमारा एक गलत संकल्प सारे तत्वों को, सभी आत्माओं को गलत एनर्जी दे रहा है। लास्ट टाइम शायद से ये बात हमने बोली होगी आपसे, पता नहीं। आपको पता है जब आप गुस्सा होते हो तो क्या होता है? ये बहुत बड़ी लिंक है, एक क्लास में सुनी होगी तो पता नहीं। अब थोड़े से गुस्सा होते हो, थोड़े से इरिटेट। देखिए इस जो ये जो कल्प वृक्ष है, झाड़ है, ट्री है, उसकी जड़े कौन है? हम हैं। बीज बाबा है, तो जड़े हम हैं। हमसे ही हम जो खींच रहे हैं पानी, झाड़ पानी को खींचता है, जो भी मिनरल्स है न्यूट्रिएंट्स है खींचता है और ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस होके जाते हैं। तो हमसे ही सब कुछ दुनिया को जा रहा है। सपोज एक जड़ है, उस जड़ ने पानी ना खींचते हुए जहर को खींच लिया, क्या होगा? वो जड़ जहां तक पहुंची है, जिस ब्रांच तक पहुंची है, वहां तक क्या पहुंचेगा? जहर ही पहुंचेगा। और ऐसे करते करते वो सारी ब्रांच मर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो हम जड़े हैं, हमारा एक संकल्प 750 करोड़ आत्माओं को चला रहा है। थोड़ा अध्यात्म में समझाएंगे। कहते हैं ना दुनिया में 7 ऋषियों के 7 गोत्र है। दुनिया में 700 करोड़ आत्माएं हैं तो 100 करोड़ एक एक ऋषि के गोत्र में आते हैं, कुल और गोत्र कहते हैं। मतलब उनसे ही उनकी सारी धारणाएं चल रही है। वो ऋषि और कोई नहीं, हम हैं राजयोगी। हमारे से सारा संसार चल रहा है। जब या आप यहां थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, वह जहर गुस्से का आगे जब जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आगे वाला और गुस्सा होगा, उससे और आगे जाएगा, उससे और गुस्सा होगा। और लिटरली जब आप गुस्सा होते हैं और आपकी जड़ें जहां तक पहुंची है वहां तक जब ये पानी जहर जो भी पहुंचेगा, तो लास्ट वाली आत्मा आपके एक गुस्से से लास्ट में एक मर्डर कर देगी, इतना पक्का है। हम दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते कि दुनिया ये कर रही है, हम कर रहे हैं, हम अंदर कर रहे हैं, उसका प्रभाव बाहर आ रहा है। ब्राह्मणों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। हम नहीं कह सकते कि दुनिया आज लोभ मोह अहंकार में भाग रही है, हम भाग रहे हैं अंदर, बाहर से छोड़ दिया है लेकिन अंदर से अभी तक नहीं छोड़ा है। मोह छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए बाबा को, उसको बोल दीजिए आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, फिर आप देख लीजिए जीवन कैसे होती है। जब तक आपकी जीवन आप चला रहे हो तब तक आप दुख में रहोगे, और जब आपकी जीवन बाप चलाएगा सुख ही सुख मिलेगा। आज भी हम चला रहे हैं, हर संकल्प के पहले बाप आ जाए और गहरी प्रोग्रामिंग बताते हैं, एकदम शॉर्टकट, बहुत ही शॉर्टकट। अगर बाप पहले प्रोग्रामिंग सिखाई, अभी एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर आज अमृत वेला उठना है, रात को सोने से पहले संकल्प करते हैं, तो बाबा को बता दीजिए, बाबा कल अमृत वेला करनी है आपकी श्रीमत अनुसार, आपको जैसी करनी है जिस समय उठाना है आप देख लो, बात खत्म हो गई। भोजन बनाना है बाबा, परिवार के लिए भोजन बनाना है, आपके बच्चों के लिए भोजन बनाना है, जैसे बनाना है आपकी मर्जी, बात खत्म। घर से बाहर निकल रहे हैं बाबा, घर से बाहर जा रहे हैं ऐसे ऐसे सेवा स्थान पर, क्या सेवा करानी है आपकी मर्जी, बात खत्म। सारी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग अगर बाबा के हाथ में देते हैं, दो है, एक खुद कर सकते हैं या बाबा, तो आप अनुभव करेंगे सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। कभी कभी शायद से आपको असफलता भी मिल सकती है, लेकिन उस असफलता में दुख नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि किसकी मर्जी से कार्य हुआ, बाबा की। और कौन सी असफलता में कौन सी महान सफलता छिपी हुई है किसी को पता नहीं है, इसलिए हम जो देखते हैं उसके ऊपर रिएक्ट होते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया। एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे। एक फार्मर था, उसके पास एक बैल था, वो खेत में चलाता था, और एक ही था, बहुत अच्छा बैल था, बहुत अच्छी खेती होती थी। एक दिन वो बैल मर गया, फार्मर ने कुछ नहीं सोचा, शांत रहा। फिर गांव वाले लोग आकर बोलने लगे, अरे तुम्हारा अच्छा खासा बैल मर गया, अभी क्या करोगे, अभी तो खेती नहीं हो पाएगी। वो शांत रहा, उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। थोड़े दिन के बाद जंगल से घोड़ा आ गया उनके यहां, उनको घोड़ा मिल गया, वो घोड़ा भी वहां रहने लगा। घोड़ा और अच्छा चलेगा खेत में, मजबूत होता है जंगली घोड़ा, तो खेत और अच्छा चलने लगा। फिर लोग आए, फिर लोगों ने बोला कि अरे आपकी तो किस्मत चमक गई कि घोड़ा मिल गया आपको। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा भी चला गया जंगल में वापस, तो लोग फिर से आए, लोग आकर बोलने लगे देखो आपकी किस्मत, आया था वो भी चला गया। मतलब उसने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद वह घोड़ा और 10 घोड़ों को लेके आया, देखिए क्या हो गया। फिर भी वो खुश नहीं हुआ, मतलब ना खुश हुआ ना उदास हुआ, जो है उस परिस्थिति में चलता रहा। तो लोग फिर से आए, बोलने लगे आपकी किस्मत तो और चमक गई। तो कुछ दिनों के बाद वो घोड़े खेती में चल रहे थे, अचानक से घोड़ा चलाते चलाते एक घोड़े ने उसके एक बड़े लड़के को, लड़का बड़ा था 24-25 साल का, लात मारी और उसकी पाव, उसका पाव टूट गया। तो लोग फिर से बोलने लगे कि देखो जो मिला उससे भी आपके बेटे का कितना बड़ा नुकसान हो गया, मतलब मिला सही नहीं आपको ऐसे कह सकते। फिर भी वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन के बाद मिलिट्री आई, देश पर प्रॉब्लम चल रहा था, मिलिट्री ने जबरदस्ती उस गांव से लड़कों को उठा के लेके गए। इनका लड़का बच गया क्योंकि प्रॉब्लम हुआ था। हुआ क्या? अच्छा, अगर आप रिएक्ट नहीं होते, हर परिस्थिति आपके ही साइड में है हर परिस्थिति, लेकिन आप जब रिएक्शन दिखाते हैं परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा है कि प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, रिएक्शन फॉर द प्रॉब्लम इट इज योर प्रॉब्लम। समस्या आपकी समस्या नहीं, लेकिन समस्या को देखकर आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो सोचते हैं, वही आपकी समस्या है। इसलिए कोई कोई लोग ऐसे हैं होशियार, उन्हें जहर भी औषधि बन जाती है, मतलब उनको जीवन को सुधार देती है, जीवदान देती है। और कोई कोई ऐसे हैं जिनके लिए अमृत भी जानलेवा बन जाता है। सोच आपकी है, आपके हाथ में, किस चीज को कैसे यूज करना है आपके हाथ में, सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे तत्व, सब कुछ न्यूट्रल है। किसी में खुद की शक्ति नहीं है आपके लिए कुछ भला या बुरा करने की, सारी शक्ति आपकी सोच में है। जिस व्यक्ति के लिए आप जो सोच रहे हैं, वह व्यक्ति आपसे वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आप सोच रहे हैं। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वह अपने आप, थोड़े दिन चलो बुरा बोलेगा, लेकिन एक दिन आएगा जल्दी, अपने आप वह परिवर्तन हो जाएगा। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, वह भी परिवर्तन होगा, अच्छे से बुरे में जाएगा, मना प्रोग्रामिंग। अपने माइंड को हर अवस्था में स्थिर रखना है। बाबा ने तो कहा है ना, सुख दुख से परे, ठंडी गर्मी, नाम मान शान से परे, और फाइनली पाप और पुण्य से भी परे। ये परिभाषा बहुत अलग है पाप और पुण्य की। कहना चाहेंगे, हम जिसे पुण्य समझते हैं वह उसकी हिसाब से पुण्य नहीं है, और हम जिसे पाप समझते हैं वह भी उसके हिसाब से पाप नहीं है। उसका पाप और पुण्य का हिसाब अलग है। इसको अगर समझ गए तो हम पाप पुण्य से परे जाएंगे, लेकिन इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा। यह अवस्था सहज है, पाप और पुण्य से परे वाली अवस्था। तो क्या करना है, हर स्थिति में अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है। हर स्थिति में आपका कितना बड़ा भी नुकसान हो, अभी कहानी सुनी उससे यही सार ले सकते हैं, कुछ भी हो जाए स्थिर रहना है। कुछ नहीं मतलब बहुत मिले तो उछलना नहीं है, और कुछ जाए तो रोना नहीं है, स्थिर रहना है। जैसे है वैसे, यही जीवन है और कुछ नहीं है, यही जीवन है और यही पार्ट है। अब देखिए, कोई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, जो है धंधा पानी करके पैसा कमाता है, परिवार को चलाता है, कोई कंप्लेंट नहीं, जीवन भर कोई कंप्लेंट नहीं, मरते दम तक लास्ट तक गरीब ही रहा, लास्ट डे तक उसे मेहनत ही करनी पड़ी, लेकिन जीवन भर कभी कंप्लेंट नहीं की। इतना समझ लीजिए, अगले जन्म में एक बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, पक्का। और कोई अमीर है, करोड़पति है, पदमपति है, जीवन भर हर बात में कंप्लेंट, खाना ऐसे है, गाड़ी ऐसी है, वैसे कपड़े ऐसे, अगले जन्म में बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन सत्य बोलना चाहिए, भिखारी बन जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि आप ही डिसाइड कर रहे हो आप, इसलिए कहते हैं ना, आप जन्म लेते हो गरीब घर में, ये आपका भाग्य है, लेकिन अगर मरते हो अमीर बनकर, यहां से गरीबी गरीबी नहीं होती, बुद्धि की गरीबी हमेशा गरीबी होती है। आपकी समझ, हर बात की समझ ही गरीब या अमीर बना देती है। तो आप चेक कीजिए अपने आप को कि आपकी अवस्था कैसी है, हर बात में कंप्लेन नहीं। बाबा के ज्ञान में ये बात हम आपको कहना चाहेंगे, संपूर्ण और संपन्न बनने की आश नहीं लगाइए, संपन्न और संपूर्ण उसे आपको बनाने दीजिए, वो आपको बनाएगा। आपको पक्का निश्चय है कि वह आपका बाप है तो आपको संपन्न बनाएगा, तो हम आश क्यों लगा रहे हैं? जब हम आश लगाते हैं और हम बन जाते हैं तो अभिमान आता है, 100% अभिमान आता है, और हमारी आश नहीं, मर्जी उसकी है। देखिए, जब मर्जी उसकी है, हमारी कोई आश नहीं, और आपको लग रहा है अंत तक मर्जी बाबा की अपने संभाली, कुछ नहीं बोला, बस बोलते रहे बाबा आपको जो करना है वो कराओ, संपन्न बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, मर्जी आपकी। अगर अंत तक मर्जी बाबा की रही और लास्ट सेकंड तक आपके अंदर कोई गुण ना भी दिखा आपको, आखिरी सेकंड में वो सब कुछ भर देगा, आखिरी सेकंड में वो कुछ भी कर सकता है, अगर कंप्लेंट ना रही तो, और मर्जी बाबा की रही तो। इसलिए आश नहीं लगाइए, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, सरेंडर हो जाए उसको। लास्ट टाइम भी बोले थे, लोग कहते हैं कि जब समंदर में तूफान लगे तो खिवैया उसको बना दो, नौका को उसके हाथ में दे दो। हम कहते हैं समंदर में उतारने से ही पहले उसको दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, तो तूफान ही नहीं लगेगा, तूफान कैसा आएगा फिर? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, शरीर छोड़ेंगे, लेकिन उसकी मर्जी से छोड़ा, ये जो सुकून है ना, ये आपको संपन्नता दिलाएगा। नहीं तो शरीर छोड़ते समय यही याद रहेगा कि संपन्न नहीं बन पाए, और यह संकल्प नीचे लेके आएगा। इसलिए बाबा के ऊपर पूरा निश्चय। तो कहना यही है, एक प्रोग्रामिंग खुद की, एक बाबा की, और हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, कंप्लेंट नहीं है। हम कहेंगे शरीर भी छूटने पर हो, शरीर भी छूटने पर आपका आपका सब कुछ जाए, चेक कीजिए क्या अवस्था होगी। किसी दिन शांत होकर बैठकर अपने से बात करके देखिए, अगर मेरा सारा धन चला जाता है, जो भी मैंने कमाया, घर में 100 है या 100 करोड़ है, सारे चले जाते हैं, तो मेरी अवस्था क्या होगी? कुछ नहीं बचा, मेरे सारे गहने कपड़े सब चला जाता, बस एक एक जोड़ी कपड़ा है बदन के ऊपर, अवस्था क्या होगी? ये चेकिंग है, ये चेकिंग जब करेंगे तो पता चलेगा मेरा मन कहाँ अटका हुआ है। बुद्धि के धागे जब तक टूटते नहीं, तब तक हम उससे नहीं जुड़ सकते। सभी में बोलने के लिए हम बोलते हैं, सच है ये बात, दुख लगे तो माफ कीजिए कि बाबा सब कुछ आपका है, लेकिन कल को अगर बाबा बोले कि सब कुछ दे दो मुझे, चेक कीजिए। कल को अगर बाबा बोले आप बड़े पद पोजीशन पर हो, किसी कंपनी में बड़े मैनेजर हो, आपकी खुद की कंपनी है, और बाबा आपको बोले बंद कर दो कंपनी और घर में बैठ जाओ, निश्चय रहेगा? हम एक सेकंड के लिए बहुत से सोचेंगे कि भगवान भी पागल हो गया, पता नहीं क्या होगा इसको, अच्छी खासी चल रही है और बंद करने के लिए बोल रहे हैं। बहुतों को कहते हैं कि वह सिर्फ निश्चय की परीक्षा लेगा और कुछ नहीं लेगा, वो सिर्फ बोलेगा कि ये सब मुझे दे दो, लेकिन अगर हम नहीं दे पाते हैं वही फेल हो जाते हैं। देखिए जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हम बहुत बातें बनाते हैं कि हम बाबा को ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, लेकिन जब होता है तो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मना हमने बस दिखावे की बातें की, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो उससे अलग क्या मिलता है कह नहीं सकते। कहानी सुनी होगी आपने, माउंट एवरेस्ट पर 10 लोग चढ़ रहे थे, एक लास्ट में था वो गिर गया, गिरते गिरते नीचे चला गया और एक टहनी से लटका, और वो बोल रहा था कि भगवान मुझे बचाओ बचाओ, जोर जोर से बोल रहा था। तो फिर भगवान ने उसकी आवाज सुनी और बोला कि बेटा हाथ छोड़ दो। उसने ये नहीं समझा कि किसने बोला है, उसने बोला कि अगर हाथ छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर से बोला कि हाथ छोड़ दो, बहुत बार उसको बोला हाथ छोड़ दो, नहीं छोड़ा उसने, बहुत बार समझाया, अंत तक यहां तक समझाया कि जब तक वो बेसुध ना हो जाए अनकॉन्शियस, तब तक बोलते रहे कि हाथ छोड़ो बेटा, नहीं छोड़ा, और वैसे ही शरीर छोड़ दिया। जब उनके सहयोगी वापिस आए तो 4 फीट की दूरी पर था। कहना क्या है, हम घबरा जाते हैं परिस्थिति में, और उस समय में हम समझ नहीं पाते कि बाबा की श्रीमत क्या है, और हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और हम सब कुछ गवा बैठते हैं, सब कुछ। भक्ति मार्ग में जो धारणा थी वह अगर ज्ञान मार्ग में धारणा हो तो आप अनुभव करेंगे बाबा हमेशा आपके साथ हैं, कहीं नहीं है, हमेशा आप ही के साथ हैं। भक्ति मार्ग में जो गुरु थे उनको तो हम गर्दन भी काट कर देने के लिए तैयार होते थे, ज्ञान मार्ग में जब वही बाप सदगुरु रूप में बैठा है तो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गर्दन तो दूर की बात है, कल को अगर बाबा बोलता है कि 50 मंजिला से कूद जाओ, कोई नहीं कूदेगा। हम कहते हैं अगर आपका निश्चय है, उसने बोला ना 100 मंजिल से भी जंप लगा दो, एक सेकंड भी वेट मत करो, वो नेक्स्ट मत दे दे कि रुक जा, कूद जा। किसने बोला है, किसने बोला है, ये जब समझ में आता है तो कल्याण समझ में आता है। यही सारी बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, मतलब निश्चय की बात है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक प्रॉब्लम है। निश्चय की परीक्षा अंत तक चलती है। निश्चय ऐसी बात है जो विजय दिला ही देती है। आपके पास कुछ ना भी हो फिर भी विजय आपकी होगी। पांडवों के साथ सिर्फ कहानी में लिखा है ना महाभारत में, श्री कृष्ण थे और कुछ नहीं था। विजय हो गई, निश्चय था विजय होने ही वाली है। कौन साथ में? अगर विजय ना भी होती है लौकिक में, शरीर भी छोड़ देते हैं, फिर भी पता है अलौकिक में विजय हो जाएगी। अगर अलौकिक में भी ना भी हो विजय, लेकिन एक सुकून मिलेगा कि किसकी श्रीमत को पालन किया। लेकिन अगर श्रीमत को पालन नहीं किया, विजय मिली भी, फिर भी अंत तक कोसते रहेंगे खुद को कि बाबा का डिसरिगार्ड किया, फिर उस विजय का कोई फायदा नहीं है। निश्चय मना पूरा निश्चय, कुछ भी हो जाए निश्चय नीचे नहीं आना चाहिए। हमारे सेंटर का कोई बच्चा आगे पीछे हो जाता है धारणाओं में, किसी और बात में, लेकिन उसके कारण बाप का और हमारा रिलेशन ना बिगड़ पाए। आने वाले समय में बहुत से गिरने वाले हैं, बाबा ने तो कहा है झाड़ हिलने वाला है, लेकिन उस समय में कोई चला गया वह उसका पार्ट है। मेरा पार्ट है बाबा के साथ रहना। तो आपका रिलेशन बाबा के साथ मत बदलिए। जब कभी आपने बाबा को कहा कि बाबा मुझे मदद चाहिए, परिवार में खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, परिवार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं मिल रहा है, और आपको मदद नहीं मिल पाती, तब उसके ऊपर संशय नहीं उठाइए। संशय गलती से भी नहीं उठाइए। मदद एक अलग बात है। आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, उनको आपने कुछ कहा ऐसे ऐसे करना है और वह नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो हमारा ये संशय तो नहीं होता कि ये हमारे बच्चे है या नहीं, ये हमारे माँ बाप है या नहीं, ये संशय में तो नहीं आते ना कभी। तो फिर उसके ऊपर क्यों संशय उठाते हैं जब उसने मदद नहीं की? कुछ होगी बात, उसकी मर्जी, नहीं की तो भी उसकी मर्जी, की तो भी उसकी मर्जी। उसकी मर्जी के लिए हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अगर हम उसके ऊपर अपनी मर्जी चला रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको नहीं समझा है वह क्या चीज है। बाबा को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक उसे नहीं समझते, समझेंगे कैसे? निश्चय से। जब तक नहीं समझते, जैसे खुद को नहीं समझते तो अज्ञान ही है। ज्ञान मिला खुद को समझने के बाद, लेकिन परम ज्ञानी बाबा के जैसे कब बनेंगे? जब बाबा को समझेंगे वह क्या चीज है। जिसके पीछे 2,500 साल से दुनिया पड़ी है कि वो क्या चीज है हमें समझना है। जिस दिन आपको बाबा समझ में आएगा, आप फिर से बोल रहे थोड़ी देर पहले बात की थी, जिस दिन आपको बाबा समझ में आएगा आप किसी को बता नहीं पाओगे कि बाबा क्या चीज है, क्योंकि सत्य कभी बयां नहीं हो सकता। समझ लीजिए, सत्य बयां कर ही नहीं सकते आप, क्या बयां करेंगे उसे हम? हम तो सिर्फ उसके गुण और कर्तव्य को बयां करते हैं। वह गुणों का सागर है, शक्तियों का भंडार है, प्यार का सागर है, लेकिन वो क्या चीज है? गुण अलग है और वो अलग है, वो क्या चीज है? उसे समझना जरूरी है। एक निश्चय ही ऐसी बात है जो हमें समझा देगा कि वह क्या चीज है, और उस निश्चय से ही हम उसकी तरफ पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा के ऊपर का निश्चय जितना उतनी समझ ज्यादा, और जितनी समझ ज्यादा उतना ज्ञान ज्यादा समझेंगे, और जितना ज्ञान ज्यादा उतना योग अच्छा, और जितना योग अच्छा उतना जीवन सुखी, और उतना विश्व कल्याण। क्लियर? तो निश्चय एक ही बात, निश्चय हिल गया सब कुछ हिल गया। आज भी बोलने में अच्छा नहीं लगता फिर भी हम बोलते हैं। आज भी हम बाबा के बच्चे बाबा को नहीं पहचान पाते। दादी के तन में आवाज बदल जाती है, कहते हैं दादी है या बाबा है, मतलब अपने बाप को नहीं पहचान पा रहे। समझ सकते हैं हम, बाप अगर कोई और वेश पहन के आ जाता है, आवाज बदल जाती है, तो हम कहते कि बाप नहीं है। मन बाप को हमने नहीं पहचाना है। जो बाप है वो किसी भी रूप में आ जाए, माँ कैसे भी रूप में आ जाए, बच्चा उसे पहचान ही लेता है। छोटे बच्चे को किसी और के पास दे दो और माँ ने अगर बुरखा भी पहना हुआ है, बच्चे को दे दिया, बच्चा पहन लेगा, ये मेरे बच्चा पहचान लेगा, ये मेरी माँ है। कहना यही है, बाप को पहचानना जरूरी है, नहीं तो आधे अधूरे वापस जाएंगे, मजा नहीं आएगा। खेल में से आधा जाना अच्छा नहीं है। बाप को पहचान लीजिए। बाप को पहचानना सिर्फ निश्चय की बात है और कुछ नहीं, निश्चय। अब का हम कहते योग, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा एक बाजू में, एक पलड़े में है, और आपका निश्चय एक पलड़े में है। जितना बड़ा निश्चय उतनी पहचान ज्यादा। देखिए ना, उस समय में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए कितने थे, कुछ ही आत्माएं जुड़ी हुई थी, 33 करोड़ बनने भी बाकी थे, 9 लाख भी नहीं बने थे, इतने कम थे। हम सोच सकते हैं उस समय ब्रह्मा बाबा की स्थिति ऐसी थी कि संशय नहीं उठा कि 33 करोड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे, सच में बाबा आते या नहीं आते, मैं तो अव्यक्त बन रहा हूं तो पता नहीं 33 करोड़ का क्या होगा, निश्चय। तो अपने आप सारी बातें हो जाते, निश्चय। ब्रह्मा बाबा लौकिक में बाबा ने इतना दिया था कि करोड़पति थे, बचा कुछ नहीं। अब सबको पता है एक दिन ऐसा था कि जीरो में थे, फिर भी निश्चय, जिसने दिया उसने पूरा किया, मर्जी उसकी। जब मर्जी उसकी चलती है तो हमारी अर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए मर्जी उसी की, जो कुछ करे हमारे हिसाब से, दुनिया के हिसाब से हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हमें पता है बाबा कर रहा है, निश्चय है। तो निश्चय में रहना है कि दुनिया के हिसाब से कुछ भी हो रहा है जाने दीजिए, लेकिन मुझे पता है मेरा बाप मेरे साथ जो कुछ कर रहा है वो बाप कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, बाबा ही सब कुछ करा रहा है। उसके कारण क्या होता है, सेकंड में परिस्थिति चेंज होती है। कहानियां तो कितनी सुनी है कि जब गुरु लोग थे, जब आश्रम थे, तब वो कुछ ज्ञान नहीं देते थे किसी को भी, सिर्फ आश्रम की सेवा बताते थे, यह करो वह करो वह करो वह करते थे। और लास्ट मोमेंट में लगता था कि अभी ये परिपूर्ण हो गया है, निश्चय बैठ गया है, बस एक हाथ रख दिया, कमाल हो गई। एक गुरु के पास एक शिष्य गया था। देखिए शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसे होता है, हम तो बच्चे हैं उसके, लेकिन सदगुरु के रूप में वो गुरु है हमारा, हमारा रिश्ता है शिष्य के जैसा। तो एक गुरु के पास एक शिष्य था। तो अब गुरु ने बताया कि आ जाओ यज्ञ में रहो। गुरु से पूछा कि मैं आपके साथ सीखना चाहता हूं, संपन्न बनना चाहता हूं। गुरु ने कहा ठीक है, आ जाओ यज्ञ में रहो, ये सेवा है करो। पहले दिन बात हुई, सेवा करता रहा। 3 साल तक गुरु ने कुछ भी बात नहीं बोली उससे, एक लफ्ज भी नहीं बोला। रोज का रूटीन, उठते थे, सेवा करते थे, खाते पीते, सोते थे, जो भी था। गुरु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं 3 साल तक। 3 साल के बाद एक बार बस देखा, इतने खुश हो गए कि खुशी में नाचने लगे। 3 साल के बाद देखा था बस, पूछा कुछ नहीं शिष्य ने सवाल, फिर भी वो करते रहे, कुछ भी नहीं पूछा कि मुझे अभी क्या करना है, कैसे करना है, नहीं, करते रहे। जो पहली बात मिली उसी को पकड़ के करते रहे। 6 साल के बाद एक स्माइल दी गुरु ने, देखिए बस एक स्माइल दी और खुशी बढ़ गई, मतलब कहने के लिए वर्ड नहीं है, ऐसी खुशी बढ़ गई उनकी। फिर 3 साल और बीते। 9 साल के बाद गुरु ने बस कंधे पर हाथ रखा और एक स्माइल दे, कुछ नहीं बोला। और 3 साल गए। 12 साल के बाद गले लगाया और बोला जाओ तुम कंप्लीट हो गए। ये होती है श्रीमत, इसे कहते हैं श्रीमत। जो बोला वही करते गए, पूछा नहीं ये हो गया आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो माना हमारा मन स्थिर नहीं। एक गुरु के पास एक शिष्य आया। जब वो आश्रम में प्रवेश कर रहा था तो गुरु बोला, अरे तुम इन सबको मेरे सामने क्यों लेके आए हो? उसने देखा आगे पीछे कोई नहीं था, इतने साथ के मत आओ, तुम अकेले आ जाओ, इतने सब लोगों की भीड़ मुझे नहीं चाहिए। तो भी शौक गया कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो फिर उसने वहां बोला कि मैं बैठ जाता हूं, मुझे जरा समझा दीजिए। तो गुरु ने कहा, तुम बहुतों को लेके आए हो, जो माँ बाप तुम्हें बोल रहे थे कि मत जाओ संन्यास लेने, वो अभी भी तुम्हारे साथ हैं, वो आपकी बुद्धि में चल रहा है, उनका क्या होगा? जो दोस्त जो घर वाले तुम्हें छोड़ने आए थे गांव तक, उनके बारे में विचार चल रहे हैं, अपने शरीर के बारे में विचार चल रहे हैं, अपने समाज के बारे में विचार चल रहे हैं, ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, समाज में अच्छाई होगी नाम ऊंचा होगा पता नहीं, विचार चल रहे हैं। तो इन सबको साथ लेके आया है, अगर मेरे पास बैठना है तो इन सबको निकाल दे और तू बैठ जा, मुझे ये नहीं चाहिए। तिबेटियन एक मॉन्क थे, कहानियां इसलिए बता रहा हूं कि अब समझ पा ले। तिबेटियन एक मॉन्क थे, उनके पास एक बड़े गवर्नर आए, उन्होंने गेट पर ही कार्ड भेजा और गुरु को शिष्य को बोला है कि अंदर जाके बताओ कि हम आए हैं। गुरु को कार्ड दिखाया गया और पढ़ा गवर्नर, तो सीधा बोल दिया, अरे गवर्नर गवर्नर का यहाँ क्या काम है, जा उन्हें भगाओ, नहीं चाहिए वो मुझे, यहाँ उनका कोई काम नहीं गवर्नर का, क्योंकि यहाँ तो हम सब बैठे हैं परमात्मा की याद में, तो गवर्नर का कोई काम नहीं। तो उस गवर्नर को, वो शिष्य ही था उस गुरु का, उसको रियलाइज हुआ कि हमने गलती की। फिर उन्होंने बताया कि आपका शिष्य आया है, ये नाम है, ये मैसेज गुरु को दे दो। जब गुरु को ये मैसेज लेके आया तो गुरु बोला, अरे वो है क्या, लेके आओ उसे, मुझे लगा कोई गवर्नर है। मतलब गुरु के सामने कौन बैठता है? शिष्य बैठता है। बाप के सामने बालक बैठता है। बाप के सामने जब बैठते हैं तो सारे टाइटल हटा दीजिए, कोई टाइटल नहीं, बस मैं बालक और वो बाप और कुछ नहीं। तो कहना यही है, ये सारी कहानियां बताने का सार यही है, निश्चय में बैठना है। कौन से निश्चय में, यह भी समझ लीजिए, कोई टाइटल नहीं, बस मैं और बाबा, उसके ऊपर पूरा निश्चय, पूरा मना पूरा निश्चय, कोई संशय नहीं। मेरा पतन भी हो जाए, मेरा पतन भी हो जाए, फिर भी उसके ऊपर का निश्चय कम नहीं होगा। स्वर्ग में मैं ना भी आऊं, फिर भी उसके ऊपर का निश्चय कम नहीं होगा। मर्जी आपकी, यही मर्जी आपको बहुत ऊंचा उठाएगी, और यही मर्जी, बाबा की मर्जी, आपको बाप की पहचान दिलाएगी। देखिए लौकिक गुरुओं को इतना ज्ञान है, किसी टाइटल को लेकर कोई आता है तो स्वीकार नहीं करते, वो कैसे करेगा, वो करता है लेकिन हम उसके जैसे नहीं बन पाएंगे। टाइटल को भी स्वीकार करता है हमारा मन रखने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप से उसके सामने टाइटल निकाल के बैठना ही सयानापन होगा। आज भी हम टाइटल लेकर बैठते हैं, यही गड़बड़ी है। टाइटल एक ही है, मैं बच्चा हूँ पॉइंट ऑफ लाइट, और वह मेरा पिता है बाप, मर्जी उसकी है, उसको जैसे चलाना है। हम कहते तन मन धन तेरा, लेकिन जब तन मन धन की बात आती है तो सबसे पहले मेरा, बाद में तेरा, तन मन धन की बात चेक कीजिए। जब सब कुछ उसका है, आपसे होने वाला हर कार्य भी उसका है, इससे राहत क्या मिलेगी पता है आपको? राहत वाली बात हम आपको बता रहे हैं। राहत यह है कि जब तन मन धन बाप का है तो उस तन मन धन से जो भी होता है उसका जिम्मेवार बाप है। यह सबसे बड़ी राहत है। आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपने बाबा को सरेंडर कर दिया, चिंता नहीं करनी पड़ेगी इस तन से किसी का उद्धार होगा या कोई और प्रक्रिया होगी इस तन से, किसी इस मन से किसी को शाप मिलेगा या वरदान मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने दे दिया। प्रसाद हमेशा प्रसाद होता है, मंदिर में जाने के बाद कोई भी चीज प्रसाद बनती है, फिर वो प्रसाद इंसान खाए या कौवा खाए, प्रसाद प्रसाद ही रहता है, उसका अस्तित्व कभी बदलता नहीं है। तो आपने जब अपने आप को समर्पित कर दिया तन मन धन से, आप बदल गए। जब तक तन मन धन आपका है तब तक आपको दुख मिलेगा, इसलिए अपने आप को बाप को सरेंडर कर दीजिए, पूरा सरेंडर, मर्जी तेरी, इस तन को काटना है या रखना है, सेवा करनी है या कुछ और करना है, मर्जी तेरी, इस धन से क्या करना है मर्जी तेरी, इस मन से क्या करना है मर्जी तेरी, मर्जी खत्म कर दीजिए। ये सबसे सहज रास्ता है बाप समान बनने का, बाबा को पहचानने का और अपने आप को पाने का। सब जिसका है उसको लौटा दीजिए, इस प्रकार बाबा को हम जान पाएंगे, निश्चय पक्का। तो दूसरी धारणा, मतलब पहले क्लास की या सेकंड क्लास की, दूसरी धारणा यह करेंगे कि निश्चय पक्का रखेंगे, हमें वह मदद करे या ना करे, कुछ भी हो जाए, बीमारी आए, मन ऊपर नीचे हो जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसका और हमारा रिश्ता ऊपर नीचे नहीं होगा। बाबा ने तो साफ कह दिया है, मैं यहां आपकी आपका लौकिक देखने नहीं आया, आपकी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं। अगर वो खुद बोलता है मैं बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं, मैं आपको धन देने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपको ज्ञान देने आया हूं, तो वो खुद बोल रहा है मैं धन नहीं दूंगा, देने भी नहीं आया हूं, तो हम उससे धन क्यों मांग रहे हैं, शरीर ठीक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो चीज चाहिए, हमारा रिश्ता कैसा हो, प्यार का रिश्ता, याद कैसी हो, प्यार वाली। याद का टॉपिक लेके हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, भोजन कर लीजिए फिर, ठीक है? याद कैसी हो, प्यार वाली। अभी तक हम बाबा को क्यों याद कर रहे हैं, आप बता सकते हैं क्यों याद कर रहे हैं, कारण क्या है? चेक कीजिए अपने आप को, बताइए। उससे प्यार है, बहुत अच्छा, लगाव है। बाबा को याद कर रहे हैं, हमारा या तो लौकिक ठीक हो जाए, अलौकिक ठीक हो जाए या पारलौकिक ठीक हो जाए, सब कुछ इसमें आ जाता है। मना अभी जो मेरी परिस्थिति चल रही है उससे मैं बाहर निकलूं, भक्ति मार्ग में याद करते थे, परिस्थिति हट जाए। अलौकिक में मेरे अंदर गुण और शक्तियां धारण हो, अलौकिक में मैं ऊंचा बनूं, श्रेष्ठ बनूं, इसलिए अलौकिक में याद कर रहे हैं। और पारलौकिक में जैसे कि उससे मुझे प्यार है इसलिए मैं याद कर रही हूं, ठीक है? लेकिन सब में क्या है, स्वार्थ है, चेक कीजिए, सब में स्वार्थ है। अगर वो हमें मार देता है तो हम उसे प्यार नहीं करेंगे, आज वो हमें प्यार कर रहा है इसलिए हम उससे प्यार कर रहे हैं, माने ये क्या हो गया, स्वार्थ हो गया, प्योरली स्वार्थ है। अगर हमें कोई मार देता है तो हम उससे प्यार नहीं करेंगे, माने अभी तक हम जो बाबा को याद कर रहे हैं स्वार्थ से याद कर रहे हैं, ये सिद्ध है। देखिए ना, विकर्म विनाश हो, मेरे अंदर गुण आ जाए, इसके लिए मैं तुझे याद कर रही हूं, यही बाप और बच्चे का रिश्ता होता है। आप चेक कीजिए, मतलब बाप और बच्चे के रिश्ते में, माँ और बच्चे के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता, अगर स्वार्थ है तो वह रिश्ता रिश्ता नहीं है। तुझे जो देना है दे दे, नहीं देना है मत दे, मेरा तुझसे प्यार है। तू गाली भी देगा तो भी मेरा तुझसे उतना ही प्यार है, जितना है वो कम नहीं होगा। इसको कहते हैं पूरी मर्जी, 100% समर्पण। भक्ति मार्ग के जैसा समर्पण कीजिए, बाबा मिल जाएगा, समझ में आएगा। देखिए भक्ति मार्ग में जो गुरु थे वह अपने शिष्यों को, कभी कभी ऐसी लीला उनकी है, हम पढ़ते हैं, लात मार के भी आश्रम से निकालते थे, गालियां देके निकालते थे। हम सुनते हैं ना अक्कलकोट महाराज, गजानन महाराज करते थे, लेकिन उसके पीछे प्यार बहुत होता था। वो शिष्य उनको पकड़ के रखते थे, फिर भी छोड़ के नहीं जाते थे। इतना बड़ा अपमान हो के कोई रुक सकता है? अब सोचिए क्यों है, प्यार है। और वह पास होते थे, यही सच्चा निश्चय है। मतलब तुझसे मुझे कुछ मिलेगा तब तक मैं तुझे याद करूंगा या करूंगी, ये झूठा प्यार है, दिखावा है, क्लियर दिखावा है ये प्यार नहीं। बाबा भी हंसता है इस प्यार को देख के, बाबा भी हंसता है। बच्चे समझ के छोड़ देता है, जाने दो। बच्चे कहते हैं ना कि पापा से, मम्मी से आइसक्रीम मिलेगी, तो मम्मी से पापा से बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते बच्चे। और वही उसी समय अगर मम्मी और पापा बोले आइसक्रीम नहीं दूंगा, तो वही गाली देना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने आपसे डिस्कस किया था, अगर आगे चल के बाबा बोलते हैं सत्ययुग नहीं आएगा, कितनी सारी आत्माएं फूल बरसाएंगी बाबा के ऊपर, इतने फूल जो 2500 साल में कभी बरसाए नहीं होंगे। कहना यही है, हम चेक कर सकते हैं हमारा प्यार कैसे है। कम से कम परमात्मा से, अपने बाप से स्वार्थ भरा प्यार नहीं कीजिए, नहीं तो वह समझ में नहीं आएगा वह कैसा है। अमृत वेला हो, क्लास की याद हो, सारे दिन भर की याद हो, नमाज शाम हो, रात को सोने से पहले वाली याद हो, बिना स्वार्थ के कीजिए। तुझे मुझसे प्यार है या नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे तुझसे बहुत प्यार है, इसलिए मैं तुझे याद कर रहा हूं या कर रही हूं। इस भाव से बाबा को याद कीजिए, परिवर्तन निश्चित है, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। हम मूंझते रहेंगे फिर भी परिवर्तन नहीं होगा, थकेंगे भागेंगे। प्यार में कभी कोई थकता नहीं। माँ बच्चों के लिए सारी जीवन करती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, चलने की ताकत नहीं होती, फिर भी माँ बच्चे को पूछती है खाना खाया। पूछना चाहिए उनको, फिर भी माँ पूछ रही खाना खाया। पापा पूछते हैं कैसे हो, ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है, नौकरी धंधा ठीक चल रहा है, बल माँ बाप बूढ़े हुए हैं, फिर भी बच्चों का ख्याल कितना रहता है। बच्चा उनके साथ कैसे भी बिहेव करे, फिर भी माँ बाप उनके साथ अच्छा ही, प्यार का ही बिहेव करते हैं। हम कहते हैं ना कि हम बाबा की माँ हैं, माँ वाला रिश्ता भी निभाते हैं ना, बाप वाला भी रिश्ता निभाते हैं। मतलब हर रिश्ते हम बाबा से निभा रहे हैं, वो हमारा बच्चा है, माना हम माँ बाप बन गए उसके। तो हमें बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करना है, कंडीशनल नहीं। बच्चा कुछ भी करे, एक दिन पता है आपको, जब बच्चा बहुत बड़ा होगा, बच्चा जब बड़ा होगा इस विश्व का प्रेसिडेंट बनेगा, तब राज्य आपको ही देना है, सिंहासन पर आपको ही पहले बिठाएगा, वो नहीं बैठेगा। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो बड़े किताब मिलते हैं, तो पहले अपने माँ बाप के हाथ में देते हैं। तो बाबा हमारा जैसे कि बच्चा है, बालक है, हम उसके माँ बाप हैं, ऐसे समझ के उससे प्यार करना है, कोई कंडीशन नहीं, वो मदद करे या ना करे। फिर देखिए कुछ ही समय में आप जान जाओगे कि बाबा क्या चीज है, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अब भोजन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आराम से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए चाहे तो थोड़ा, फिर कंटिन्यू करेंगे आराम से, ठीक है। अभी लास्ट सेशन में हम थोड़ा ज्ञान भी लेंगे और योग भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, सारे वीडियोज हम देखेंगे, ठीक है। ओम शांति।